ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆரோஜம் யானி ரோக் ரஹித், வருத்தாவஸ்தா மே கே ஹோ ஜாதா ஹை. वो रोग है वो घेर लेते हैं. युवावस्था में जो है प्राय करके रोग दूर रहता है. जो आरुजम अवस्था है शरीर की, वही स्वस्थ अवस्था है. इतना ही नहीं, जरावस्था दूर है. अभी प्राय के युवावस्था ही स्वस्थ अवस्था है, वृद्धावस्था दूर है. और स्वस्थ कब कहा जाएगा कि इंद्रिय शक्ति ही अप्रतिहत. अपनी जो इंद्रियों की जो शक्ति है वो अभी तक अप्रतिहत है. यदि हम ढंग से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं और बोल सकते हैं वगैरह, जो भी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है उनका जो कार्य है वो हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो ये जो युवावस्था में ही ये संभव है. और जैसे ही 50 को पार करते हैं तो क्या होता है, चक्षु के लिए क्या चाहिए, चश्मा चाहिए. कान के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए ना. और चलने के लिए लकड़ी चाहिए. पकड़ने के लिए कोई साथीदार चाहिए कि भाई मेरा झोला पकड़ लो, मेरे से उठाया नहीं जाता. तो सब कार्य समझ ले, जब लंबा क्या करे, स्वातंत्र्य की हानि हो जाती है. और कहा यावत् क्षयो नायुषः, जब तक आयुष का क्षय नहीं हुआ है, आयुष अभी शेष है. इससे मानो भर्तृहरि राजा ये भी कह रहे कि ठीक है, युवावस्था में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं कर पाए तो वृद्धावस्था में छोड़ना नहीं है, आयुष की समाप्ति तक लगे रहना. अब आयुष की समाप्ति तक तो वो ही लगा रह सकता है जो युवावस्था से ही इसमें लगा है. और यह बात निश्चित है. देखिए, जब तक कार्य कर रहे थे तब तक ये नहीं किया तो फिर रिटायर्ड होने के बाद नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं. इसलिए आत्मश्रेयसी तावदेव आत्मा का आत्मश्रेय यानी कि आत्मकल्याण तावदेव मैंने तब तक विदुषा यानी बुद्धिमान मनुष्य को कर लेना चाहिए. कार्यम प्रयत्नो महान, महान कार्य क्या है, यही है कार्य, महान कार्य. ये जो हम ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं जीवन में, इससे कोई बहुमूल्य कार्य हो ही नहीं सकता, महान कार्य हो ही नहीं सकता. यही महान कार्य है. जिसके जीवन की एक क्षण यदि ब्रह्ममय बीती तो उनका जीवन क्या हो जाता, सफल हो जाता. प्राणांते पे यदि अंतिम समय में भी यदि मन यदि ब्रह्म में रहा तो उनका जो जीवन है वो सफल हो जाता है। इसलिए यही महान कार्य है और वो युवावस्था में ही कर लेना चाहिए। संदीप्ते भवने तो कूप खननम, जैसे दृष्टांत बताया कि आग लग जाए, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, तो उस समय कहे कि अब कुआं खुदवाओ, पानी निकलेगा, उससे ये आग को बुझाएंगे तो क्या होगा बताओ? कुआं खुद करके तैयार हो जाए और उसमें से आप पानी निकालेंगे, इससे पहले घर जल करके समाप्त हो जाएगा। तो जैसे वो कूप खनन का जो उद्यम है उसका कोई मतलब जैसे नहीं रह जाता है, ठीक ऐसी बात ही यदि युवावस्था हमारी चली गई और युवावस्था में कुछ भी नहीं किया तो वृद्धावस्था में फिर कुछ होना नहीं है। इसलिए ये जो प्रार्थना है, इसमें प्रार्थना में देवताओं से ये जो प्रार्थना की गई उसका टोटल अभिप्राय यही है कि युवावस्था में ही ये सब देवता जो है वो हमारी पूर्ण सहायता करते हैं, बाद में भी करते नहीं करते नहीं, लेकिन हमारा सुवर्ण काल यदि बीत गया तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको उपलक्षण बना करके इन सभी देवताओं से प्रार्थना की गई कि सब इंद्रियां स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना है। यदि हम सुनने में समर्थ है तभी तो वेदांत का श्रवण करेंगे, यदि कान नहीं है तो। अब कई बार ऐसा भी होता है, युवावस्था भी है, कान भी ठीक है, तो विघ्न तो कई एक प्रकार से आते हैं ना। ये तो नहीं है कि युवावस्था में विघ्न नहीं आएगा और बाद में कान समाप्त हो जाए, यही विघ्न, ऐसा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने भागवत कथा का आयोजन किया, अब उसमें कलश यात्रा चल रही थी और जैसे कि होता है आगे आगे पटाखे छोड़े जा रहे थे, तो एक पटाखा ऐसा फूटा, बड़े बड़े पटाखे थे, तो यजमान आगे चल रहे थे तो उसके कान के पास ही फूट गया बताओ, और दोनों कान में धाक बैठ गई और बंद हो गए बताओ। सात दिन तक उनके घर में कथा चली, वो नहीं सुन सके, और आठवें दिन में उनकी धाक खुली बताओ, समझ में आया कि नहीं? तो वो कथा नहीं सुन सके। तो सज्जना ये जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही कान बंद हो जाते, विघ्न आता है, ऐसा नहीं, युवावस्था में भी ये संभव है। इसलिए इस प्रकार के आगंतुक जो विघ्न है उस विघ्न की निवृत्ति के लिए ये देवताओं से प्रार्थना है। इसलिए देवता कहीं अन्यत्र नहीं है, ये ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया के अभिमानी रूप से हमारे ही अंदर है। देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ तो जैसे कि आप लोगों ने पुराण में सुना है कि देवता बार बार हार जाते थे, तो हार करके एक बार भगवान के पास गए कि कहने लगे कि भगवान हम तो बार बार हार रहे, ये असुर जो है हमारा राज्य छीन जाते हैं, परेशान करते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो कहा कि ऐसा करो, दधीचि ऋषि से प्रार्थना करो, वो यदि आपको सहायता करते हैं तो उनकी हड्डी से यदि आप हथियार बनाएंगे, शस्त्र बनाएंगे, तो उससे आप जीत सकते हैं। तो ये सब हुआ, दधीचि ऋषि के पास देवता गए। भागवत में बड़ा ही सुंदर संवाद है, पठन करने योग्य है कि मनुष्य को शरीर के ऊपर कितना अभिनिवेश होता है। एक बाल निकाल करके देने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है। दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है, हम आपको हमारा सामर्थ्य देते हैं। वो दिया तो उस समय जो है ना दधीचि ऋषि की जो आयु थी वो युवा थी, युवा थे वो उस समय, और शादी भी हो चुकी थी, एक पुत्र था और पुत्र अभी स्तनपान ही कर रहा था। तो फिर उनकी जो पत्नी थी वो अपने पुत्र को लेकर के अपने मायके चली गई, और वो बच्चा छोटा ही था तो वो उनके जो मामा थे उनको ही वो पिता कहते थे। वो बच्चे का नाम है पिप्पलाद, और उनके मामा के लड़का का नाम है श्वेत केतु। तो दोनों एक बार खेल रहे थे तो उतने में श्वेत केतु अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए। तो ये पिप्पलाद है वो भी उनको पिता ही कहते थे, उनको पता नहीं था कि ये मेरे मामा है। वो कहने लगे मेरे को भी बैठना है। तो वो श्वेत केतु कहने लगे कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो, ये मेरे पिताजी है, तेरे पिताजी नहीं है। तो पिप्पलाद को लगा कि अच्छा तो ये इनके पिताजी, तो मेरे पिताजी कौन है। उन्होंने आकर के अपनी माता को पूछा कि मेरे पिताजी कौन है। तो उनकी माता ने बहुत टाल मटोल की, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, आज तो मेरे को अपने पिताजी की पहचान करा ही दे, कौन है मेरे पिताजी। तो बच्चे की जिद के आगे अपनी मां ने ये जो उनके पिताजी का जो हाल और जो उन्होंने जो कार्य किया वो सब बता दिया, उनका शरीर कैसे छूटा। तो उसी समय पिप्पलाद कहने लगे कि मैं देवताओं से बदला लूंगा, कहते मेरे पिताजी का शरीर जिन्होंने छीन लिया उससे मैं बदला लूंगा, मेरे पिताजी को जिन्होंने मार दिया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते। तो उनकी मां कहने लगी कि नहीं बेटा, देवताओं से बदला नहीं लिया जा सकता, नहीं मेरे को तो लेना ही है, क्या करना चाहिए। तो उनकी मां ने कहा कि अच्छा तुम भगवान शंकर की को प्रसन्न कर, तपस्या कर, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको वो इच्छित वरदान दे देंगे, तो तुम जो चाहो वो कर सकोगे। तो पिप्पलाद ने बड़ी भारी तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि क्या चाहिए। तो कहने लगे देवताओं से बदला लेना। भगवान शंकर कहने लगे कि देवताओं से तो तुम बदला नहीं ले सकोगे। तो कह नहीं मेरे को तो लेना ही है। अच्छा ठीक है, चलो ले लो। तथा अस्तु, कहा ठीक हो जैसे तुम्हारी इच्छा। तो देखते हैं कि आंख जलने लग गई, कान जलने लग गए, सभी इंद्रियों के जो द्वार है वो सब जलने लग गए, वो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं भगवान आप, ये तो मैं बड़ा परेशान होते जा रहा हूं, मेरे सभी इंद्रियों के गोलक में मेरे को दर्द हो रहा, दुख हो रहा। भगवान शंकर कहने लगे कि तुमको देवताओं से बदला चाहिए, नहीं तो वो ले रहे हो तुम। तब जाकर के उनको पता चला कि ये देवता कहीं अन्यत्र नहीं है किंतु मेरे ही अंदर है। जो बाहर हम देवता को मानते हैं वो समष्टि देवता है, वो रोज समष्टि देवता ही हमारे अंदर व्यष्टि रूप से विद्यमान है। और हमारे अंदर जो व्यष्टि रूप से विद्यमान देवता है वो सब मिलकर के एक समष्टि बनती है, तो समष्टि और व्यष्टि रूप से एक ही देवता के दो विभाग है। जैसे एक वृक्ष यदि है कहीं तो उनको वन नहीं कहते, किंतु एक से कहीं एक अधिक है तो क्या कहेंगे, वन। वृक्षाणाम समूह वन, वृक्षों का जो समूह है उनको वन कहेंगे, एक वृक्ष को वन नहीं कहेंगे। वैसे ही जो हमारे व्यक्तिगत जो शरीर के अंदर जो देवता है उसको व्यष्टि कहेंगे, व्यस्त कहेंगे, व्यस्त यानी एक बटे हुए, व्यस्त का अर्थ है बटा हुआ। और ये सब मिलकर के समष्टि बनते, तो वो समष्टि देवता हमारे अंदर व्यष्टि रूप से विद्यमान है, उसी से हमारा जीवन है। ये जो बाह्य संसार है ना, स्थूल संसार, वो सारा स्थूल संसार जो है वो हमारे अंदर आकर के फिर बाहर निकलता चला जाता है, और सारा संसार हमसे अंदर आकर के बाहर निकल जाता है, हमको पता नहीं है। और हमारी जो स्थिति है वो समष्टि से है। देखिए आप लोगों ने आज तक हिसाब लगाया कि हम लोग बाल्यावस्था से लेकर आज तक कितना पानी पी गए, बताओ यदि वो इकट्ठा किया जाए तो वो समष्टि है कि व्यष्टि है, बताओ वो जल तो समष्टि कहां है, हमारे अंदर ही तो है। अच्छा भोजन का हिसाब लगाओ, कितना भोजन हम लोग खा चुके, हिसाब लगाया जाए दिन में तीन बार तो करते ही है। अब टोटल लगाया जाए, कोई सौ साल जी रहा है तो सौ साल में देख लो बड़ा ढेर लग जाएगा। और वायु जो है वो हम कितने ग्रहण कर रहे हैं श्वास के द्वारा, और उच्छ्वास से बाहर निकालते, तो ये जो समष्टि देवता है वो ही हमारे अंदर व्यष्टि रूप से प्रवेश करते हुए जो है हमारे शरीर की स्थिति को धारण किए हुए है। तो सबसे पहले चाहिए ये सारे देवताओं की प्रसन्नता। यदि ये सब देवता यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो सज्जनों हम इन इंद्रियों से शरीर से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, वो तीनों कार्य तभी ही हो सकते हैं जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इंद्रिया स्वस्थ हो, अंतकरण स्वस्थ हो और शुद्ध भी हो, तभी हम निर्विघ्न रूप से ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए देवताओं की प्रसन्नता बड़ी ही आवश्यक है। इसलिए देवताओं से बाह्य स्थूल पदार्थ नहीं मांगे जा सकते, यदि मांगते हैं तो हम घाटे में, वो लाख का 12,000 है। देवताओं से तो ये शरीर की स्वस्थता ही मांगी जानी चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम ये जो हमारा मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसको हम सफल कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये प्रार्थना की गई। तो ये मित्र वगैरह देवताओं से, ये सब हमारे शरीर के अंदर देवताएं हैं, वो सब हमारे अनुकूल रहे, ये अभिप्राय है। अब ये जो है इसमें टोटल ये हुआ कि शरीर में जो प्राण और करण की अभिमानी देवता है, इसमें अब एक बात और भी देखे, इसमें प्राण के अभिमानी देवता से भी प्रार्थना की गई और करण के अभिमानी देवता से भी प्रार्थना की गई। चक्षु वगैरह क्या है? करण है। और इसमें मित्र में एक आपको बताया प्राण वृत्ति के अभिमानी देवता भी उसमें ग्राही है। और वरुण से अपान वृत्ति के भी अभिमानी देवता ग्राही है। तो केवल हमारे करण ही स्वस्थ रहे, करण से अभिप्रेत है इंद्रिया, इंद्रिया ही स्वस्थ रही, इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण क्रिया है वो भी स्वस्थ रहनी चाहिए। इसलिए प्राण और अपान का ही यहां पर ग्रहण हुआ है। किंतु देखिए हमारे ये शरीर में जो एक ही प्राण पांच प्रकार से विभक्त होकर के हमारे शरीर को धारण किए हुए है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। देखिए एक ही प्राण कार्य भेद से पांच प्रकार का है, अन प्राण ने धातु से बनाए, प्र उपसर्ग लग गया तो प्राण बन गया, अप उपसर्ग लग गया तो अपान शब्द बन गया, वी उपसर्ग लग गया तो व्यान बन गया, उद उपसर्ग लग गया तो उदान बन गया, और सम उपसर्ग लग गया तो समान। धातु एक ही है। तो देखिए प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये जो है एक ही प्राण पांच प्रकार से विभक्त होकर के हमारे शरीर को धारण किए हुए है। इसलिए सबसे पहले जो प्रधान है प्राण, जो नासिका रंध्रवर्ती कहते हैं, वो स्वस्थ रहने चाहिए। हम स्वस्थ रूप से श्वास और उच्छ्वास की क्रिया यदि कर सकते हैं तब वो विघ्न का अभाव है उस समय। अगर यदि श्वास ढंग से नहीं ले सकते तो वो क्या है? वो भी विघ्न है। इसलिए प्राण क्रिया भी सुचारू चलनी चाहिए। अपान वायु जो हमारे शरीर को नीचे की ओर टिका करके रखता है, यदि वो स्वस्थ नहीं है, हमारा उत्सर्ग तंत्र स्वस्थ नहीं है, पेट खराब है, तो बेचैनी रहेगी कि नहीं बताओ? प्रसन्नता रहेगी नहीं? इसलिए अपान वायु की जो क्रिया है वो भी सुचारू चाहिए। उदान जो हमारे शरीर को ऊपर की ओर टिका करके रखते हैं, या खाए हुए जो अन्न है उनके सूक्ष्म हिस्से को जो शरीर में ऊपर की ओर उठा करके ले जाते हैं, वो उदान वायु, वो उदान क्रिया भी जिससे हम डकार वगैरह करते हैं, वो जो उदान वायु है वो भी स्वस्थ रहना चाहिए। व्यान वायु जो सर्व शरीर में, और अपा अब समान जो हमारे पेट के अंदर है, भोजन हम यदि करें और अंदर आलोड़न नहीं होगा तो जगह नहीं होगी तो भोजन पचेगा नहीं पचेगा। तो भोजन की जो पाचन क्रिया भी वो भी कैसे होनी चाहिए, सुचारू होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो प्राण है वो भी सुचारू रूप से चले, इसलिए प्राण वृत्ति जो अभिमानी देवता है उससे प्रार्थना की गई कि हमारा प्राण स्वस्थ रहे और करण स्वस्थ रहे। तो ये करण और प्राण यदि स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे उनके अभिमानी देवता, तो हम शरीर से स्वस्थ होकर के ब्रह्म विद्या का श्रवण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो वो श्रवण के द्वारा जब हमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो हमारा ये जो जीवन है वो सफल हो पाएगा। इससे आगे जो है वायु वगैरह को नमस्कार किया जाता है, समष्टि और व्यष्टि वायु को, और भगवान की कृपा होगी तो कल करेंगे।